તારીખ 11-8-1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 150
શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 અંબાજીના શ્રી કૃષ્ણદાસભાઈ ઉપર લખેલો પત્ર છે. 8 પોસ્ટકાર્ડથી સંકલિત થયેલો પત્ર છે. શરૂઆતના 3 પોસ્ટકાર્ડ ઉપરનો સ્વાધ્યાય થયો છે. ચોથા પોસ્ટકાર્ડમાં લખે છે કે આત્માને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની કલ્પના વડે વિચારવામાં લોકસંજ્ઞા, ઓમસંજ્ઞા અને અસત્સંગ એ કારણો છે. શું કહે છે? આત્મ સ્વરૂપનો કોઈ વિચાર કરે છે, આત્મ સ્વરૂપનો વિચાર કરતા યથાર્થપણે આત્મ સ્વરૂપ લક્ષમાં આવે, જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસે, તો એ સમ્યક સન્મુખ થઈ અને સમ્યકપણે પ્રાપ્ત થાય. પરંતુ લોકસંજ્ઞા, ઓમસંજ્ઞા અને અસત્સંગ એવા કારણો જીવના પરિણામમાં ઉપસ્થિત હોય તો એ આત્મ સ્વરૂપનો વિચાર કરે ત્યારે એને કાંઈ ને કાંઈ કલ્પના થઈ આવે. આત્મ સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસવાને બદલે એને કલ્પના થઈ જાય કોઈને કોઈ કે મારો આત્મા આવો છે. એ કલ્પનાને ગ્રહિત મિથ્યાત્વ પણ કહેવાય છે. અને કલ્પના એ વસ્તુના વાસ્તવિક સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ છે, અન્યથા છે. તેથી કલ્પના દુઃખનું કારણ છે. કેમ કે પ્રયોજન તો સુખનું છે. આત્મ સ્વરૂપને વિચારીને, આત્મ સ્વરૂપને જાણીને અને અનુભવીને પ્રયોજન તો સુખનું છે, એના બદલે આનું ફળ દુઃખ આવે છે. એટલે એ 3 કારણોને યથાર્થપણે સમજવા ઘટે છે. અને એ 3 કારણોમાં ઉદાસીન થવું જોઈએ અથવા એ 3 કારણોનો નાશ કરવો જોઈએ. તેમાં લોકસંજ્ઞા એટલે શું? કે જ્યાં સુધી ધર્મસાધન કરવામાં પણ જીવની દ્રષ્ટિ સમાજ ઉપર રહે છે, લોકો ઉપર રહે છે, છેવટે કાંઈ નહીં તો અન્ય સમાજ નહીં પણ ધાર્મિક સમાજ, જે સંપ્રદાયમાં હોય, જે મંડળમાં હોય, જે સંસ્થામાં નીચે ચાલતું હોય, આજુબાજુનું જે કાંઈ ટોળું હોય, ટૂંકામાં પછી એ ટોળું નાનું હોય કે એ ટોળું મોટું હોય, એની સાથે સંબંધ નથી. હિન્દીમાં લોકસંજ્ઞા કિસકો કહેતે હૈ? और लोक संज्ञा किसको कहते हैं? तो लोगों को पर नजर रहती है, दूसरे लोगों से हमें कोई संबंध नहीं है। संबंध कितने किन किन से है कि जो लोग हमको जानते हैं पहचानते हैं। देश प्रदेश में बहुत से मनुष्य रहते हैं जिसे कोई हमारा संबंध नहीं है, लेकिन हमारे जान पहचान वाले होते हैं उसके बीच में हमारा कोई न कोई स्थान है, ऐसा हमें एक निश्चय बना रहता है कि हमारा भी कोई स्थान है। हम आत्मा है, आत्मा होने से हम एक असंग तत्व है, निर्लेप तत्व है और निरपेक्ष तत्व है, किसी की अपेक्षा नहीं है, पर अपने स्वरूप से हम परिपूर्ण हैं, इसलिए निरपेक्ष है। ऐसा स्वरूप स्वरूप तो ऐसा है, फिर भी ऐसा स्वरूप का अस्वीकार होकर के हम ऐसा स्वीकार करते हैं कि इस माहौल में, इस ज्ञान पहचान वालों में, इस मंडल में, इस सर्कल में, इस संस्था में, इस संप्रदाय में कि हमारा कोई स्थान है, ये हमारी कल्पना है। हमारा कोई स्थान है, हमारी कोई इज्जत है, इसलिए तो परिस्थिति वैसी की वैसी बनी रहे, इसमें कोई गिरावट नहीं आए और इसमें कोई विशेषता आ जाए, यही हम चाहते रहेंगे। इस प्रकार के परिणाम को लोक संज्ञा कहते हैं, इसका स्थूल स्वरूप है। सूक्ष्म स्वरूप वो है कि हम छोटी मोटी बातों में भी हमारा दिखाव अच्छा रहे, चाहे कपड़ा पहनने में हो, चाहे गृहादि अलंकार हो, चाहे बातचीत का प्रसंग हो, चाहे किसी विषय में हमारा प्रवेश हो, हम भी कुछ हैं। जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, एक और दृष्टांत दे दें कि हमारा लेक्चर चलता है, अगर हमें लोक संज्ञा होगी तो कैसे प्रकार से होगी, हम हमारा दृष्टांत दे दें, ठीक है ना? तो लोक संज्ञा इस तरह से हमको हो जाएगी कि हमारा प्रवचन सबको बहुत अच्छा बढ़िया लगना चाहिए। क्या सुनने वाले को, सबों को हमारा प्रवचन अच्छा लगना चाहिए, ऐसा हमें बोलना चाहिए कि जिससे अच्छा लगे और सबों के माइंड में हमारी अच्छी से अच्छी इंप्रेशन क्रिएट हो जाए। ऐसे जो मेरे परिणाम है वो मेरे लोक संज्ञा वाले परिणाम है। यहां से लोक संज्ञा चालू होती है, कहीं भी किसी भी प्रसंग में लोगों की नजर में, दूसरों की नजर में अपना अच्छापन दिखे, ऐसा लक्ष्य रहना, इस लक्ष्य को, ऐसी इच्छा रहना, उसको कहते हैं लोक संज्ञा। पर ये लोक संज्ञा को कृपालु देव ने अन्य पत्र में कालकूट विष कहा है। क्या कहा है? कालकूट विष कहा है। क्यों? तो जिस तरह जहर है वो खाने से, लेने से मृत्यु होती है, वैसे लोक संज्ञा के परिणाम हमारे आत्मस्वरूप के जो प्राण है, ज्ञान प्राण है, आनंद प्राण है, सुख प्राण है, शांति का प्राण है, उसको मारते हैं, उसका खून करते हैं। बहुत विपरीत असर आती है, आप आत्मा को आवरण करने वाला एक परिणाम है। इसलिए इससे बचना, लोक संज्ञा के परिणाम से बचना। और वो कैसे बचा जाए, जिसको समाज प्रतिबंध कहते हैं। प्रतिबंध के दृष्टिकोण से क्या कहते हैं, समाज प्रतिबंध सबसे बड़ा प्रतिबंध है, वो सबसे पहले खत्म होना चाहिए। चार प्रतिबंध क्रम से नाश करने योग्य है, उसमें सबसे पहले समाज प्रतिबंध को खलास करना चाहिए। और आत्मकल्याण का एकमात्र लक्ष्य होवे और एक ही निष्ठा से हम हमारे धर्म साधन में लगे, तब ये समाज प्रतिबंध गौण हो, समाज प्रतिबंध टूट जाएगा। लोग कुछ भी कहे, लोग कुछ भी बोले, लोगों की नजर में कुछ भी आए, हमें हमारे आत्मकल्याण से वास्ता है, लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। बस यही आत्मकल्याण की तीव्र भावना है। हम हमारे मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो समाज प्रतिबंध तो सहज मात्र में टूट जाता है। बड़ा प्रतिबंध होने के बावजूद भी वो प्रतिबंध तोड़ने में उतनी ताकत नहीं लगती। इसमें क्या है, अगर समाज को मुख्य करके हम हमारे आत्मकल्याण को गौण करते हैं और अधोगति में चले जाएंगे, तो जिसकी शर्म हमने रखी वो हमको अधोगति से दुख के छुड़ा, अधोगति के दुख से छुड़ाने में नहीं आएंगे। इसलिए हमें आत्मकल्याण को मुख्य करना है और समाज को गौण करना चाहिए। लोक दृष्टि से कुछ भी नहीं करना है, धार्मिक व्यवहार भी लोक दृष्टि से नहीं करना है। कहीं भी हमारा नाम आ जाए, इस तरह से हमें दान भी नहीं देना है, कि भाई इस भावना से नहीं देना है, इस इच्छा से नहीं देना है। कहीं भी हमारी विशेषता दिखे, इस प्रकार से हम व्रतादि करें, इस प्रकार से हम शास्त्र स्वाध्याय करें, इस प्रकार से दान दें या कुछ भी साधन करें, कि हमारे लिए जहर खाने का बराबर हो जाएगा। इसलिए लोक संज्ञा से दूर रह करके एकमात्र आत्मकल्याण के लक्ष्य से ही हमारी धर्म प्रवृत्ति होनी चाहिए। वो लोक संज्ञा वाला परिणाम जिसको होता है, वो चाहे कितना भी शास्त्र का अध्ययन करे, विद्वान हो, पंडित हो, लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकता। जिसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना है, तो कितना भी समझदार हो, बुद्धिमान हो, फिर भी आत्मकल्याण के विषय में कुछ समझदारी नहीं है, कुछ बुद्धिमानी नहीं है, तो स्वयं को नुकसान करता है। किस तरह, तो आत्मस्वरूप का विचार करने को जाएगा, उसको कल्पना हो जाएगी, उस तरह का नुकसान होगा, ग्रहित निचात होगा। कैसे होगा, खास करके जो धर्म के नेता होते हैं उनको इस लोक संज्ञा का जोखिम बहुत है। हमने इसलिए हमारा दृष्टांत दिया, जो भी हो, क्यों कि एक तो धर्म को चलाने वाले को मान सम्मान ज्यादा मिलता है, सीट भी ऊंची रखते हैं, आप लोग नीचे बैठ जाते हैं, मान तो यहां से चढ़ना शुरू हो जाता है, और सब सुनते हैं, पूछते हैं, बार बार पूछते हैं और समाज में इज्जत बनती है, मान सम्मान बनता है। मान देने वाले तो मान देते हैं लेकिन लेने वाले को जोखिम बहुत है। तो क्या लोक संघ न होने से कैसे परिणाम हो जाएंगे कि इन लोगों से मैं हमेशा नवी नई नई बातें बताता रहूं। आम समाज में मनुष्य की सामान्य वृत्ति कैसी होती है, ये मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है, मनोविज्ञान की परिस्थिति है कि जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे होती है। कुतूहल बहुत होता है जनरली किसी कोई व्यक्ति को छोड़ करके बहुत कुतूहल रहता है और उस कुतूहलता के कारण उसको जो भी नई नई चीज समझ में मिलती है तो उसका इंटरेस्ट बहुत रहता है। और लोक संज्ञा वाला वो अच्छी तरह जानता है कि अगर इन लोगों को क्यूरियोसिटी में रखे, इन लोगों को नई नई बातें बताते रहे तो वो लोग ज्यादा चिपटेंगे हमको, तो लटकाते रहता है। तो नई नई बातें बताने के दृष्टिकोण से वो आत्मकल्याण का दृष्टिकोण चूक जाता है और नई नई बातों खोज करने में उसका दिमाग चलने लगता है। यहां से नई बात कौन निकालने, यहां से नई बात कौन सी निकालने कि जिससे लोगों को और अच्छा लगे। हमको बहुत नई नई बातें मिलती है, हमको बहुत नई बात समझने मिलती है। ये कौतूहल वृत्ति है मनुष्य की, ये बाह्य दृष्टि है, यानी ये पर रुचि के कारण से ये वृत्ति उत्पन्न होती है। पर रुचि है, पर पदार्थ की रुचि है, उसमें आत्मरुचि का अभाव होता है। पर रुचि को पोषण देना, उसकी पुष्टि करना, ये उन लोगों का नुकसान है। पर ऐसा अभिप्राय और हमारे परिणाम हमको कालकूट विष खाने के बराबर हो जाता है। इसलिए लोक संज्ञा के विषय में बहुत सतर्क रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए और लोक संज्ञा का अभाव करके एकमात्र आत्मकल्याण में हमें लगना जरूरी है। तीव्र आत्मकल्याण की भावना होती है जिसको, उसको लोक संज्ञा कोई आड़े नहीं आती। उनको सहज मात्र में लगेगा कि लोगों को जो कहना है सो कहे, मेरे कोई लोगों से लेना देना नहीं है, मेरे तो आत्मकल्याण करने में मेरा काम है और उसी लक्ष्य से मेरी जो कुछ प्रवृत्ति हो तो एक ही लक्ष्य से, एक ही निष्ठा से हो रही है, फिर कोई हमें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये बात रही लोक संज्ञा की। ओग संज्ञा, ओग संज्ञा दो तरह की होती है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल ओग संज्ञा ऐसी होती है कि सभी प्रकार, सभी संप्रदाय में धर्म के अनेक प्रकार हैं, अनेक संप्रदाय हैं हमारे यहाँ। मनुष्य कोई न कोई संप्रदाय में जन्म भी लेता है, पर उस संप्रदाय में जो भी धर्म साधन जाने माने हैं उनको वो बिना परीक्षा करके स्वीकार कर लेता है, आगे से चली आती है, कितनी भी विकृति हो कोई विचार नहीं करेगा। बिना विचार किए, बिना समझे, बिना परीक्षा किए रूढ़िगत रूप से जो भी क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं करने में आती हैं उसको ओग संज्ञा कहते हैं। ये ओग संज्ञा का स्थूल स्वरूप है, ये ओग संज्ञा का स्थूल स्वरूप है, पर ओग संज्ञा का सूक्ष्म स्वरूप फिर क्या है? कि कितने लोग ऐसे होते हैं कि हर बात में चर्चा विचारना चिंतन विचार विशेष रूप से करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक शब्द में उसको कहते हैं कि तत्व ज्ञान का अभ्यास। तो तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को ओग संज्ञा रहती भी है और नहीं भी रहती है। रहती है तो किस तरह से रहती है? जो भी वो तत्व ज्ञान का अभ्यास आगम के माध्यम से या ज्ञानी पुरुष के सत्संग के माध्यम से इनको होता है, वो तत्व ज्ञान का अभ्यास तो वैचारिक भूमिका में सीमित रख करके संतुष्ट होता है कि अभी मुझे पहले इतनी समझ नहीं थी, अब इतना अभ्यास करने से इतना सत्संग मिलने से मैं समझता हूँ, सब बातें मुझे समझ में आ रही है। वो भी ओग संज्ञा में पड़ा है। चाहे वो तत्व ज्ञान के कितने भी सूक्ष्म पहलू को समझता हो, कारण शुद्ध पर्याय को लेकर के भी कितना भी सूक्ष्म हो विषय, जब क्षोभक्षम होता है तो उन सब बातों समझ में आ सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अनंत बार ऐसी समझ परलक्षी हो चुकी है कि परलक्षी ज्ञान में अंग पूर्व का ज्ञान भी होता है, परंतु अपने समझ को वो प्रयोगान्वित नहीं करता है तो वो संज्ञा बनी रहती है। जब कोई भी जीव तत्वज्ञान को समझ करके उसी तत्वज्ञान को अपने परिणमन में लागू करता है, परिणमन में उतारने का प्रयास करता है, उस रूप परिणमने का प्रयास करता है, और जैसा जैसा उनका ये प्रयास चलता है, प्रैक्टिकल साइड जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं उसको, वो जितना जितना हासिल होता है उतनी उतनी ओग संज्ञा की निवृत्ति होती जाती है। आखिर में जब आत्मस्वरूप का भाव वासन होता है तब ओग संज्ञा का नाश होता है। जहां तक आत्मस्वरूप का भाव वासन यानी पहचान यानी लक्ष्य नहीं हुआ, वहां तक ओग संज्ञा बनी रहती है। जो प्रयोग करता है उसको ये ओग संज्ञा कम हो जाती है, और जो प्रयोग करता ही नहीं है उसको बराबर ओग संज्ञा चालू रहती है। प्रयोग से, अवलोकन के प्रयोग से, भेद विज्ञान के प्रयोग से ये ओग संज्ञा का नाश होकर के आत्मस्वरूप का प्रतिभास होता है, आत्मस्वरूप का यथार्थ निश्चय होता है, तब ओग संज्ञा का नाश हो जाता है। इसके पहले जितनी मात्रा में प्रयोग हुआ उतनी मात्रा में अनेक प्रकार के जो भी ओग संज्ञा के परिणाम हैं वो नाश होने लगते हैं। पहले स्थूल नाश होते हैं, बाद में सूक्ष्म नाश होने लगते हैं। कहने का तात्पर्य उतना ही है कि जिसको ओग संज्ञा बनी रहती है प्रयोग पद्धति में नहीं आकर के, उनको आत्मस्वरूप का कितना भी अध्ययन आगमों से हो कुछ न कुछ कल्पना हो जाएगी और गणित मिथ्यात हो जाएगा। जो तत्व ज्ञान का अभ्यास मिथ्यात्व को पतला करके सम्यक्त्व प्राप्ति तक पहुंचाने का वो समर्थ है, पर दूसरा कोई इसमें निमित्त है ही नहीं। तत्वज्ञान के अभ्यास के अलावा कोई दूसरा निमित्त है ही नहीं। वही तत्वज्ञान का अभ्यास अन्यथा कल्पना करने में हो जाए तो फिर छुपने का तो कोई अवसर रहेगा नहीं, कोई साधन नहीं रहेगा। इसलिए भोग संज्ञा में हमें नहीं रहना है, मुमुक्षु को अवश्य अवश्य ऐसा निर्धार करना चाहिए कि हमें ओग संज्ञा में नहीं रहना है। और ओग संज्ञा में रहकर के आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं करना है। आगमों से, तर्क से, युक्ति से, न्याय से, अनुमान से आत्मस्वरूप का निश्चय यथार्थ रूप से नहीं किया जा सकता, कल्पना बन जाती है। ऐसा क्यों होता है कि ओग संज्ञा में परलक्ष रहता है, या परलक्ष के कारण से भी ओग संज्ञा बनी रहती है? तो दूसरी बात वो है, थोड़ा सूक्ष्म बात है वो ओग संज्ञा के विषय में, वो है कि जीव तत्वज्ञान का अभ्यास बहुत लंबा समय पर करने पर भी, सत्संग आदि का सेवन दीर्घ काल पर पर्यंत होने पर भी उनको क्या लाभ हुआ वो चेक नहीं करता कि मुझे फायदा क्या हुआ। मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की दिशा में कितना आगे बढ़ा या बढ़ता हूं कि नहीं बढ़ता हूं, उसका वो कोई जांच तलाश करता नहीं। पर ऐसे ही अभ्यास करते ही रहता है, जिंदगी भर बूढ़ा हो जाए तो भी वही शास्त्र पढ़ता रहेगा बार बार, पर पढ़ते पढ़ते कुछ लाभ हो जाएगा, ये इनका अभिप्राय इसके पीछे है। तो उसको ओग संज्ञा की निवृत्ति करने नहीं देता, और वो अपने में जांच तलाश नहीं करता है, और वैसे ही प्रवृत्ति चालू रखता है जैसे माला फेरने वाला माला फेरे ही करेगा, दूसरी क्रिया करने वाला करते ही रहेगा, ऐसा शास्त्र पढ़ने वाला पढ़ते ही रहे, सत्संग करने वाला सत्संग करते ही रहे। हमको क्या फायदा हुआ वो चेक नहीं करता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो है कि वास्तव में उनको अपने आत्म कल्याण की दरकार नहीं है। बाजार में कोई व्यापारी ऐसा नहीं है कि जो व्यापार करते हुए अपने नफा नुकसान को देखता नहीं हो, बताइए कोई हो तो। कोई ऐसा व्यापारी नहीं मिलेगा आपको कि व्यापार भी करे और नफा नुकसान को देखे ही नहीं। यहाँ 99.9 तत्वज्ञान के अभ्यास का, ज्ञान का व्यापार करता है और नफा नुकसान को देखता नहीं है, ये कितनी बुद्धिमानी है। दरकार नहीं है हमें, फिर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? ये ओग संज्ञा बने रहने का मुख्य कारण वो है कि स्वलक्ष्य हो, स्वलक्ष्य ज्ञान का व्यापार हो तो ऐसा कभी नहीं बनेगा। उनको असंतुष्टपना आ जाएगा और ये असंतुष्टता जोर करेगी, नहीं 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 मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, नहीं चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा? मेरा जीवन चला जाता है, समय व्यतीत होता है तो मेरा जीवन चला जाता है, महंगा जीवन चला जाता है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो सही परिस्थिति में आने का उसकी शक्यता है, अवकाश है, और जैसे कैसे भी वो आ जाएगा। ये पात्रता का लक्षण है, जैसे संतुष्ट पड़ा वो अपात्रता का लक्षण है, वैसे संतुष्ट पड़ा पात्र संतुष्टपणा अपात्रता का लक्षण है, वैसे असंतुष्टपणा पात्रता का लक्षण है। तो पात्रता आने से उनका कोई इस विषय में संशोधन चालू होगा, दरकार से वो अभ्यास करेगा और प्रयोग पद्धति की बहुत सी बातें शास्त्रों में भी है, सत्समागम में भी आती है, वहां से पता चल जाएगा कि हमारी कार्य पद्धति में कौन सा मिसिंग पॉइंट था। हम प्रैक्टिकल ज्ञान को मिस करते थे, थ्योरेटिकल ज्ञान में ही आगे बढ़ते रहते थे, जबकि प्रैक्टिकल ज्ञान के बिना आत्मानुभव जो है, आत्मज्ञान है, सम्यक दर्शन है, वो किसी प्रकार से संभव नहीं है। तो ओक संज्ञा की निवृत्ति करके हमें आत्मकल्याण करना होगा, और जहां तक ओक संज्ञा बनी रहेगी, आत्मा के विषय में विचार करने में भी कुछ न कुछ कल्पना हो जाया करेगी ओक संज्ञा के कारण से। क्योंकि कुछ चीज ऐसी ही होती है कि बिना प्रयोग नहीं होती। मामूली बात में भी ऐसा होता है कि साइकिल चलाने वाले को साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कार चलाने वाले को सुंदर बनी हो ऐसी कोई लड़की नहीं होगी। छोटी अवस्था में बचपन में वो सिखाया जाता है कि देखो तुमको आगे होकर के अपना किचन को चौका को संभालना होगा, तुम रोटी बनाना सीखो पहले। पहले रोटी तो सबकी बिगड़ेगी, किसी को नहीं आएगी। यही कारण है कि वो प्रैक्टिस से ही बन सकता है। प्रैक्टिस में तो फिर बात करते करते बन जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो बात करते करते बन जाएगी। बिना प्रैक्टिस देखने से वो बात, इसका ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान होता नहीं। ये सब टेक्निकल सब्जेक्ट ऐसे ही होते हैं। आत्मकल्याण करना वो भी एक सबसे विश्व में बड़ी से बड़ी टेक्निक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म टेक्निक है, ये खूबी है, ये कला है कैसे आत्मकल्याण किया जाए। ये कोई हट से नहीं होता है कि चलो तपस्या करके शरीर को क्रश कर दो आत्मकल्याण हो जाएगा। ये शरीर कोई हमारा इतना दुश्मन नहीं है, शरीर कोई इतना दुश्मन नहीं है कि उसको मार मार करके हम आत्मकल्याण कर लें। दुश्मन तो हमारी शरीर के प्रति देहात्म बुद्धि वाली वृत्ति है, शरीर दुश्मन नहीं है। जो इस वृत्ति को नहीं समझता है और शरीर को मारता है, कृपालु जी ने एक दृष्टांत दिया है उपदेश छाया में, तो सर्प को नहीं मारता है, सर्प को बेल को मारता है। क्या? जिस बेल में, जिस दर में सर्प चला गया उसको लकड़ी मारने लगा, सर्प को क्या होगा? सर्प को तो मारा नहीं, छुआ नहीं, वैसे आत्मवृत्ति को तो स्पर्श किया नहीं। पर जिसके आधार से आत्मवृत्ति बिगड़ती है, ऐसे शरीर को खत्म करो, ये कोई तरीका नहीं है साधन का। बात तो समझदारी से हो सकती है, हट से नहीं होती। काम बल का नहीं, काम कल का है, कला का काम है। आत्मज्ञान को भी ज्ञानियों ने कला कही है। ज्ञान कला जिस केरे घट जागी, उदग में सहज वही रागी। ज्ञानी विषय सुख में मगन नाही, ऐसी विपरीतता संभव नहीं। बनारसी दास जी ने गाया है नाटक समय साल। तो इस तरह से ओक संज्ञा का नाश करना चाहिए। और बाद रही फिर आखिर में ए सत्संग की, सवा दस बजे तक लेना है, 10 बजे तक कराना है। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग को छोड़ करके कोई भी संग हो जिसमें सत्संग का अभाव हो उसको कहते हैं असत्संग।
सत्संग में भी जो असत्संग होता है उसको भी स्पष्ट है। सत्संग की आड़ में भी जो असत्संग होता है उसको भी स्पष्ट है।
सत्संग की आड़ में कोई असत्संग होता है उसका क्या है? उसको भी असत्संग कहे या सत्संग कहे? जिस संग से सत का रंग चढ़े वही सत्संग है। सत मैंने आत्मा, आत्मरस, चैतन्य रस, अमृत रस, इसका रंग चढ़े वो सत्संग है, बाकी सब असत्संग है। सत्संग मुमुक्षुओं के आपस के संग को सत्संग कहते हैं, जबकि मुमुक्षु एक ही निष्ठा से आत्मकल्याण करने वाले हो ऐसे संग को सत्संग कहेंगे। और ज्ञानी को ज्ञानियों का संग को परम सत्संग कहते हैं, क्योंकि ये उत्कृष्ट संग है। बाकी के संग को असत्संग कहते हैं, और दुर्गुणी मनुष्यों का संग करना या जो कोई देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष का विरोध करता हो उनका संग करना, उनको सुनना, उनके परिचय में रहना, ये कुसंग है। ये असत्संग तो नहीं है किंतु कुसंग है। सत्पुरुष के वचनों के विरोध करने वाले असत्संग में नहीं आते, वो कुसंग में आते हैं। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना, जो अनेक प्रकार के दुर्गुण की प्रधानता वाले हो लौकिक में भी, इससे भी दूर रहना। बहुत रंग रागी हो उससे भी दूर रहना। वो भी कुसंग है। अनादि मिथ्या मान्यता का पोषण हो उसको क्या कहेंगे? प्रश्न हुए, वो कुसंग है। जो आत्मा को अधिक नुकसान करता है। असत्संग और कुसंग में अंतर क्या है कि हमारे उपादान की दृष्टि से देखे तो असत्संग में नुकसान है, इससे ज्यादा कुसंग में बहुत नुकसान है। अब सत्संग के सिवा हमें किन किन लोगों का संग रहता है तो थोड़ा हमें विचार कर लेना चाहिए कि अगर हमारे परिवार में आत्मकल्याण की भावना वाले या लक्ष्य वाले अन्य कुटुंब के सदस्य नहीं होते हैं, इनका संग है वो भी असत्संग है। फिर जाते हैं हम समाज में, तो समाज में तो समाज के लोग ऐसे होते हैं, वो तो अपेक्षा करने योग्य नहीं है, इसलिए वो भी असत्संग है। समाज के ज्ञाति के गैदरिंग में जाने का हमें और रुचि होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि ये असत्संग का एक बड़ा प्रसंग है। तो माहौल ही ऐसा होता है, इस माहौल हमारी सत्संग की वृत्ति वालों को अनुकूल नहीं है। इसलिए जो सही सत्संग का इच्छुक होता है तो इन सब प्रसंगों में कटौती करके आखिर में बंद कर देगा कि हमें कोई पार्टी बाकी फलाने फलाने में कहीं जाना नहीं है, समाज के गैदरिंग में से बचेगा। और होता है बाजार होता है जहाँ हम व्यवसाय करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, वहाँ भी सत्संग की अपेक्षा रखना बेकार है। यहाँ तो लौकिक प्रयोजन के हिसाब से ही सब आते हैं, वो भी असत्संग है। अब देखिए कि परिवार बाजार समाज इनके बीच में रह करके इनका संग नहीं करना है, बात थोड़ी कठिन लगेगी। तो एक तो इन लोगों के बीच में रहना पर उनका संग करना नहीं, तो भी हो सकता है असत प्रसंग है उसमें जाना आना बंद कर दो। हाँ, हमको हमारे संबंधों को, पुराने संबंधों को निभाना हो, मेंटेन करना हो तो जाना पड़ेगा, लेकिन उनका मेंटेनेंस है वो हमारी दुर्गति का कारण बनेगा। तो दुर्गति को क्रिएट करना है निभा करके या छोड़ना है, इतना विवेक हमें करना है। लोग ऐसा अवश्य कहेंगे कि आप आजकल आते नहीं है, दिखते नहीं है, क्या बात हो गई है, मौन रहना अच्छा है। ये भी दिखाव करने की जरूरत नहीं है कि हम धर्म में बहुत लग गए हैं इसलिए नहीं आते हैं, वो भी जरूरत नहीं है। आजकल ऐसा मन नहीं होता है तो नहीं आते हैं। प्रश्न है कि मुमुक्षुओं के वहाँ ऐसा प्रसंग हो तो जाना कि नहीं जाना। तो आपका मुमुक्षु के साथ धार्मिक संबंध है या लौकिक संबंध है, किस कारण से आपको जाना है? मुमुक्षु को आप हिलते मिलते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, किस कारण से? सत्संग के कारण से। तो वो प्रसंग में आपको सत्संग मिलेगा क्या?
अगर करो
तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करो तो मुमुक्षु इकट्ठे होंगे, कहलाने वाले या सही मुमुक्षु?
ज्यादा इकट्ठे होंगे तो कहलाने वाले ना।
सही तो आने के सही मुमुक्ष वो तो आएंगे ही नहीं, सब बहुभाग तो आएंगे ही नहीं। अब जो आएंगे वो तो कहलाने वाले आएंगे, हम भी मुमुक्ष हैं, वहां सत्संग होगा भी कैसे? कैसे सत्संग होगा?
धार्मिक सब उनका धार्मिक जनों का संग भी अच्छा नहीं लगता, उसको कुटुंबी कैसा अच्छा लगेगा?
तो सुगानी जी ने अपने पत्र में लिखा है कि जिसको साधर्मी जनों का संग भी नहीं रुचता उसको कुटुंब संग रुचता होगा, यह कल्पना करना ही बेकार है, ऐसा लिखा है किसी ने लिखा। क्या आप आजकल सत्संग में नहीं आ रहे हो, सौनगढ़ नहीं आते हो, कई साल से नहीं आए हो, तो क्या कुटुंब में जम गए क्या? कुटुंब परिवार में इतने मस्त हो गए कि सत्संग में आपको आने का भाव ही नहीं होता है, उस पर भावना ही नहीं होती, प्रवृत्ति नहीं होती, क्या बात है? तो अपने ओर से उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि देखिए हम तो साधारण जनों के संग में भी रहते नहीं है, वो रहना चाहते भी है, हम तो अकेले हमारे में ज्ञान ज्ञान में रहना चाहते हैं, हम तो साधारण जनों का संग भी नहीं रुचता। क्यों? कि आजकल के जो साधारण जन है वो कहलाने वाले ज्यादा होते हैं, वास्तव में नहीं होते हैं, पर वो अच्छी तरह समझते थे, इसलिए ऐसे ऊपर ऊपर चलने वालों के संग में उनको रहने का कुछ पसंद नहीं था।
उनके पास तो ज्ञान कला थी इसलिए वो बात आ गई, अगर मुमुक्षु उनका कॉपी करने लगे तो किस प्रकार का नुकसान कर लेते?
क्या प्रश्न है? पूज्य सोगानी जी के पास तो ज्ञान कला थी, तो वो तो अपना ज्ञान ध्यान में मस्त रह करके अपना काम करते थे और कर भी गए, एक भवतारी हो गए। परंतु इसकी नकल कोई मुमुक्षु करने लगे तो उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। ये कोई प्रसंग नकल करने का तो नहीं है, हाँ? ये प्रसंग नकल करने का नहीं है, काम कोई नकल से थोड़ी ना होता है। अंदर में असली भाव होना चाहिए, असंगपने का भाव होना चाहिए, पर उस लायक दशा भी होनी चाहिए। जब ऐसा भाव होता है तो उस लायक दशा होती है, तो दशा में आने की बात है। बाह्य में तो नकल करे और अंतरंग में वृत्ति दूसरा काम करे, वो तो बात तो मायाचार की हो जाएगी। तो उस तरह से सत्संग है, अधिक से अधिक सत्संग में रहना और अधिक से अधिक एकांत में रह करके अगर अपनी वृत्ति बराबर आत्म कल्याण में लगी रहती है तो वो अच्छा से अच्छी बात है। बाकी साधर्मी जनों जो कहलाने वाले साधर्मी जन है उनका संग भी सोच समझ करके कहना करना है, वरना सत्संग के बहाने सत्संग की बात हो जाया करेगी और कहां चढ़ जाएंगे हमको ये पता नहीं रहेगा। तो सारांश ये निकलता है कि यथार्थ सत्संग को हम नहीं जहां तक पहचानेंगे कि यथार्थ सत्संग कहां होता है, कहां मिलता है, तो हम कहीं और जगह सत्संग के बहाने भी फंसे रहेंगे और या तो लौकिक कार्यों में या सत्संग में फंसे रहेंगे और हमारा जीवन चला जाएगा। जिसको असत्संग में रहना होता है, भले ही वो आगम लेकर के आत्मा का विचार करता है तो भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना करेगा और ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाएगा। क्यों? असत्संग के कारण से। जिन लोगों का संग नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों का धार्मिक बहाने से, स्वाध्याय के बहाने से ये परिचय बढ़ जाता है और खुद को ख्याल नहीं रहता है कि मैं सत्संग करता हूं कि असत्संग करता हूं। ऐसा ख्याल जब नहीं रहता है तब ये आत्मा को विचार करने में भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना में चढ़ जाता है।
कैसे पहचाने लक्षण कौन से होते हैं साधर्मी के लक्षण कौन से होते हैं जो उसको अनुकूल या प्रतिकूल पहचाने?
दो तरह से वो बात को नापना। सबसे पहले हमारे परिणाम से कि हमारी जो आत्म कल्याण की निष्ठा है, लक्ष्य है, उसको पोषण मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलता हो तो ये सत्संग नहीं है, है सत्संग है। या तो हमारे आत्म कल्याण की निष्ठा नहीं है या तो सामने आत्म कल्याण की निष्ठा वाले सत्संग में नहीं है। नंबर एक, जिन लोगों से आप संग में आते हो उनके साथ इतनी आत्मीयता हमारी होनी चाहिए जैसे हम आत्मीयजन होने से एक दूसरे की खबर अंतर पूछते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, कोई आजकल दिक्कत तो नहीं, तकलीफ तो नहीं, कोई काम तो मेरे लायक हो तो बता देना, कोई तकलीफ हो तो वो बोल देना, हम किस काम के हैं। वैसे मुमुक्षु में आत्मीय जन, मुमुक्षु आत्मीय जन होते हैं, तो उनको पूछ लेना कि आत्मकल्याण के सिवा अन्य कोई निष्ठा, अन्य कोई लक्ष्य तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो हमको संग नहीं करना है, मेहरबानी करके हम ऐसे लोगों के संग में रहना नहीं चाहते हैं। ऐसा कोई तो आत्मीयता पूर्वक स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पर वो बात छिपी भी नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति अन्यथा हुए बिना रहेगी नहीं, कहीं न कहीं वो गड़बड़ करेगा। जो मुमुक्षु होकर के भी, सत्संग में रह करके भी, आत्मकल्याण को छोड़ करके इधर उधर की जो प्रवृत्ति करते हैं तो संग करने लायक नहीं, तो अच्छी भी रहेगी। इसलिए थोड़ा फिर से जो मुमुक्षु होकर के भी और सत्संग में रह करके भी आत्मकल्याण को गौण करके या छोड़ करके इधर उधर की कोई भी प्रवृत्ति कर लेता है, करता रहता है,
या कोई भी प्रकार की अपेक्षा वृत्ति रखता
है, हाँ कोई न कोई इसको अपेक्षा वृत्ति है, कोई न कोई आशा है, कोई न कोई अपेक्षा है। बाह्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं होगी तो अपने स्थान की तो अपेक्षा होगी ही होगी कि मेरा स्थान है तो मुझे बनाए रखना है, मेरा स्थान में आगे पीछे नहीं हो जाए। ऐसे लोग करने लायक नहीं है, या तो इस प्रकार की इसकी वृत्ति छूट जानी चाहिए आपस के दिल खोल के बात करने से, या तो संग छूट जाना चाहिए, दो में से एक बात होना जरूरी है, वरना दोनों को नुकसान हो जाएगा, अवश्य अवश्य नुकसान होगा ही।
आत्मकल्याण के हेतु से सत्संग करने आते हैं, अगर उनको कोई भी प्रकार की गड़बड़ होती है और वो सरलता के साथ उस बात को नहीं रखते हैं तो उसको किस प्रकार से
अगर कोई सत्संग में आता है आत्मकल्याण के लक्ष्य से आता है
वो ऐसा समझता है,
ऐसा समझता है कि मैं आत्मकल्याण के लक्ष्य से आता हूँ, फिर भी गड़बड़ करता है, मतलब वास्तव में आत्मकल्याण का लक्ष्य नहीं है, तो फिर क्या आगे प्रश्न क्या है? गड़बड़ करता है और
उस गड़बड़ का भी सरलता के साथ में निवेदन नहीं करता है,
कहाँ से करेगा? तो गड़बड़ करे क्यों? गड़बड़ का निवेदन करने के लायकात हो तो गड़बड़ करेगा ही क्यों?
फिर भी चलो भूल चूक गड़बड़ हो भी गई तो
वो तो हो गई तो वो तो निवेदन करेगा, लेकिन जिसको अभिप्राय पूर्वक होना है उसका तो मुमुक्षुपना चला गया, लेकिन जिसको हो गई वो तो कोई भूल हो गई तो बता देगा कि मेरे से ये हो गया है,
अगर निवेदन नहीं होता है तो उसका मतलब अभिप्राय सही से वो भूल,
हाँ अगर वो निवेदन नहीं करता है, गड़बड़ करता है फिर भी गड़बड़ को छिपाता है, तो उनको अभिप्राय की भूल साबित होती है, प्रूव होती है कि इसके अभिप्राय में ही भूल है। ऐसे मुमुक्षु को अभी सत्संग करना चाहिए नहीं, वो करने लायक नहीं,
वो मुमुक्षु इस नुकसान से कैसे बचे? नुकसान
तो नुकसान से तो तभी बचे के अपना लक्ष्य बदले तब तो बचेगा, या तो सत्संग में इनके विरुद्ध जो बातें आती हो ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे अभी आ रही है ऐसी बातें तो सत्संग में ही आएगी कि सत्संग करने वाले को सत्संग कैसे निष्फल होता है, कैसे सफल होता है, किन कारणों से निष्फल होता है, किन कारणों से सफल होता है, ये बातें तो सत्संग में आएगी, उस पर ध्यान दें और उसी का अनुकरण करें, अमलीकरण करें तो निकल जाएगा, निकल सकता है। इस तरह से ये जो कृष्णामृत है कृपालु देव का, कृष्णदास भाई जैसे बहुत सुपात्र जीव को लिखा हुआ है, हमको हमारे पे वो लेना है। और पूरा पोस्ट कार्ड है वो एक ही वचन में है, इसलिए उसका एक एक विभाग करके हमें उस पर सत्संग करना चाहिए। तो पहला तो कि उसमें उदासीन हुए बिना निसत्व ऐसी लोक संबंधी जप तप आदि क्रिया में साक्षात मोक्ष नहीं है। साक्षात मोक्ष तो नहीं है, परंपरा भी मोक्ष नहीं है, ऐसा माने बिना निसत्व ऐसे असत शास्त्र और असदगुरु के जो आत्मस्वरूप को आवरण के मुख्य कारण है, ऐसे कारणों को साक्षात आत्मघाती जाने बिना जीव को जीव का अपना स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुर्लभ है, पहचान होना बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, ये क्वेश्चन यहाँ पूरा होता है। और प्रकट ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष के प्रकट आत्मस्वरूप को बताने वाले ऐसे वचन भी उन कारणों के सेवन से जीव को स्वरूप का विचार करने में बलवान नहीं होने देता, इतना बड़ा नुकसान होता है। ये विषय पर थोड़ा विस्तार से स्वाध्याय करेंगे। समझ में चुका है।